जो आज हम पारा शुरू कर रहे हैं, इसकी पीछे पीछे जो हम आयात पढ़ चुके हैं उनके साथ इसका एक रब्त है। वो जो आयत हमने लास्ट पढ़ी थी क्या थी, आपको कुछ याद है? मुहर्रमात की लिस्ट थी ना, कि कौन सी औरतें हैं जिनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते। जब उसके बाद, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? विरासत के अहकाम, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल आता है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको शौक है कि आप ज्यादा इस इल्म को सीखें कि भाई इतना हिस्सा इसका है तो फिर फलां का कितना है, और उसका इतना है तो फिर फलां का कितना है, तो फिर आप विरासत के आप रिकॉर्डिंग्स हमारी वेबसाइट से सुन सकते हैं इंशाल्लाह। और 7 to 12 आया, हमने 7 से 12 तक तकरीबन विरासत के बारे में बातें पढ़ी थी। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़ा है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लेकिन आपने कैसे ही इल्मुल फराइज लोगों को सिखाया, जो आज मैं और आप अगर वैसे पढ़ें, हमें नहीं इस इल्म का पता हो तो हमें समझ ही नहीं आती। और देखें फिर आप लोगों के कितने क्वेश्चंस हैं कि इसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम उम्मी होने के बावजूद आपने वो बातें बताई जो आज तालीम याफ्ता होके भी हमें नहीं समझ आती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाला अल्लाह था, इससे पता चलता ये मोजज़ा है ना, वरना कोई नहीं ऐसे समझ सकता और न कोई इतनी बातों को समझा नहीं सकता लोगों को। फिर आप देखें औरतों को उस जमाने में कितना कितनी विरासत मिला करती थी, जीरो। और उनको जब हाफ दिया गया तो ये उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि इनको क्यों दिया जाए, ये घर बैठी होती, ना किसी जंग में जाती है, ना इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, ना ये कुछ कमाती है, फिर क्यों इनको मिलना चाहिए। तो वहां उन्होंने सवाल किया कि हाफ क्यों इनको दिया जाए, और 1400 साल बाद आज भी यही सवाल है कि इनको हाफ क्यों, इनको तो पूरा मिलना चाहिए। वो कहते थे इनको हाफ क्यों, इनको तो जीरो मिलना चाहिए। तो देख लें कि कल्चर बदल जाते हैं, सोसाइटियां बदल जाती हैं, जमाने बदल जाते हैं, मगर अल्लाह का कानून सेम है, वो नहीं बदलता। और यही हमारी बात होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज कैसे भी वो नॉर्मल समझी जाती हो, मगर हमने उसको लेकर नहीं चलना कि हम ये सोचे ये क्यों ऐसे है, क्यों नहीं पूरा दिया जाता, लड़के से आधा क्यों इसको दिया गया है, इसको तो पूरा पूरा मिलना चाहिए, फलां को इतना क्यों मिला है, फलां के लिए क्यों इतना रखा गया है, कितने सारे सवाल आते हैं जहन में। तो ये मेरे और आपके सोचने की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हिस्से बना दिए और इसी को हमने फॉलो करना है। फिर आप देखें कितने सारे अहकाम दिए गए, और तुमको प्रॉपर्टी ना समझो, उनको कुछ दे दिया है तो उनसे वापस ना लो, कितना भी तुमने किनतार भी दे दिया हो फिर भी नहीं तुमने वापस लेना। और फिर एक आदमी को ये बताया गया कि तुम अगर इसको छोड़ते हो तो ये सोचो कि कितने तुम्हारे इसके साथ कुर्बत के दिन गुजरे हैं, कितने इंटीमेट टाइम तुमने इसके साथ गुजारे हैं, कि तुम कैसे इससे कोई चीज ले सकते हो, किस किस तरह से अल्लाह ताला ने समझाया। फिर भी अगर औरतों को शिकायत रहे कि नहीं हमारे कोई हकूक नहीं है इस्लाम में या कुछ है, वो इसलिए है कि वो पढ़ती तो है नहीं खवातीन, और बस सुनी सुनाई बातों को जो भी लोगों ने प्रोपोगंडास किए उनके अंदर आ जाती हैं। ये आयतें कितनी साफ तौर पे बताती हैं कि कितने हकूक अल्लाह ताला ने, बल्कि हकूक ही नहीं, अल्लाह ने वकालत की है औरत के लिए। मर्दों को कहा है कि वो तुम ऐसे करते हो, कैसे तुम ये कर सकते हो, उनको प्रोटेक्शन दी है, ये हैं जिनके साथ तुम नहीं शादी कर सकते, तुम्हारा निकाह इनके साथ नहीं है जायज। और उनके अंदर सबसे पहले जो लिस्ट थी, अगर आप इस पूरी आयत को, जो आयत 23 है, उसको आप डिवाइड करें तो 3 किस्में इसमें बनती हैं। पहली किस्म वो है जो नसब से हराम हो जाते हैं रिश्ते, अबदी हराम है ये, पुपियां खालाएं भतीजियां भांजियां माएं बेटियां बहनें, ये अबदी महरम है, इनसे हमेशा के लिए हराम हो गया कोई भी ऐसा ताल्लुक रखना, चाहवानी, दादी परदादी नानी परनानी सब इसमें आ गई, बेटी पोती नवासी सब इसमें आ गई, नीचे तक बहने सुतेली बहने सकी बहने ये भी सब आ गई इसमें। तो उसके बाद दूसरी किस्म रजात की है, रजाई माएं भी और रजाई बहनें भी, और रजाई जितने रिश्ते बनते हैं, जैसे रजाई खाला है, रजाई फूफी है, रजाई बहन है, तो ये सारी चीजें फिर उस उनके तहत रजाई भांजियां भतीजियां वो सब उसी तरह जैसे नसबी रिश्ते हराम हो जाते हैं, उसी तरह रजात से भी रिश्ते हराम हो जाते हैं। फिर आप तीसरा देखेंगे कि जो निकाह के ताल्लुक से हैं रिश्ते, जिनमें सास आ गई, जिसके अंदर रबीबा आ गई, जिसमें ऐसी यानी वो जो इस वजह से कि निकाह इंसान कहीं करता है उसकी वजह से, जैसे बहू हो गई, ये रिश्ते हराम किए गए, और दो बहनों को भी एक जगह जमा करना ये भी हराम किया गया। ये भी निकाह के जरिए ही होता है ना, ये भी रिश्ता हराम हुआ। ये फेरिस्त जो है वो आगे से आगे, फिर पहली तो बिल्कुल अब्दी महरमों की है, फिर आगे से आगे, फिर आप देखते हैं फिर आगे इनके अंदर, यानी एक वक्त में दो बहनों के साथ नहीं शादी की जा सकती, और उसी की कंटिन्यूएशन ये अगली आयत है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका उसी से ताल्लुक है। वो अभी आयत खत्म नहीं, यानी बात खत्म नहीं हुई, आयत तो मुकम्मल हो गई लेकिन बात अभी जारी है। मगर ये पारों की तकसीम जो है ना, ये बहुत बाद में की गई है, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सिपारे इस तरह से तकसीम नहीं थे। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि बात तो मुकम्मल नहीं हुई थी, पारा मुकम्मल हो गया, तो आप बहुत जगह पे आप देखेंगे कि बात आगे जाके मुकम्मल होती है और अधूरी बात छोड़ दी जाती है एक पारे में। तो ये पारे सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए कि हम 30 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर दें उसके लिए, लेकिन आपको देखेंगे कोई बहुत ज्यादा रब्त नहीं आपको नजर आएगा। तो ये पारा हमारा शुरू होता है वल मोहसनात से। मोहसन किसको कहते हैं, कौन सी औरत मोहसनात है, क्योंकि आप एंड में अलिफ ता देखते हैं ना, इसका मतलब मुअन्नस के लिए है और जमा मुअन्नस है ये, जैसे मोमिना की जमा मोमिनात, तो मोहसिना की जमा मोहसिनात, ठीक है। तो मोहसिनात कौन औरतें हैं, और मिनन निसाई, तुम्हारी औरतों में से यानी मुसलमान औरतों में से जो मोहसिना। अब मोहसिना जो है ना, ये लफ्ज कुरान पाक में चार मानों में इस्तेमाल हुआ, ठीक है, चार मानों में आया। इस ये माने लिख लें आप, नंबर 1 शादीशुदा के, नंबर 2 आजाद औरतें, नंबर 3 पाक दामन औरतें, और नंबर 4 मुसलमान औरतें, ठीक है। कि अब इसका मैंने आपको लफ्जी माना तो बताया, किला तो उससे क्या ताल्लुक है, तो किला यानी किले में भी क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। जब कोई किला बंद हो जाता है, पुराने जमानों में शहरों के गिर्द फसीलें बनाई जाती थी, किले के अंदर शहर हुआ करते थे, तो वो उनकी हिफाजत के लिए होते थे कि दुश्मन से हिफाजत रहे। इसी तरह एक मुहसिना औरत जो होती है वो भी एक किले के अंदर आ जाती है जबकि वो शादी कर लेती है। आप देखें कोई उसके ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठा सकता, कोई उसको कोई शादी का पैगाम नहीं दे सकता, कोई उसके साथ कोई ऐसा बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो शादीशुदा है, उसके हस्बैंड की प्रोटेक्शन उसको हासिल है। फिर आजाद औरतें, आजाद यानी वो गुलाम नहीं है, लौंडियां नहीं, तो खानदान की भी तो एक प्रोटेक्शन होती है। फिर पाक दामनी भी इसके अंदर आ जाती है कि पाक दामन औरतें, क्योंकि किला बंद है, और फिर इसके माना मुसलमान औरत भी, क्योंकि इस्लाम का भी एक किला है जिसके अंदर हिफाजत है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा इनमें से मीनिंग होगा, ये चार मीनिंग मैंने आपको बताए, इस जगह स्पेसिफिकली शादीशुदा का मीनिंग आएगा, ठीक है। अब देखें चार माने मैंने आपको बताया ना, उन चारों में से इस जगह कौन सा फिट होता है, शादी का। तो जो शादीशुदा है मीन अन्नीसाई औरतों में से, यानी जो जो पिछली लिस्ट आ रही थी उसमें से अब अगली वो एक कैटेगरी रह गई है जो शादीशुदा औरतों की, ये लास्ट वन रह गई है। इल्ला मा मलकत अईमानुकुम, सिवाय उन औरतों के जो तुम्हारी लौंडियां हैं, जो तुम्हारे हाथों तले हैं, मतलब तुम्हारी लौंडियां, वो चाहे शादीशुदा भी हो, उनके साथ तुम शादी भी कर सकते हो, ताल्लुक भी कायम कर सकते हो। अब ये क्यों कहा गया, इसको पहले समझने, पहले ये बात समझ आ गई है कि पिछले जो सारे रिश्ते थे उनमें एक लास्ट रह गया था, और वो क्या था, जो शादीशुदा औरतें हैं, यानी किसी की औरत की शादी हुई हुई है, तो तुम उसके साथ उस टॉप ऑफ निकाह एक निकाह नहीं कर सकते, शादीशुदा औरत के साथ तुम अगेन शादी नहीं कर सकते। मगर हाँ एक एक्सेप्शन जरूर है, वो है लौंडियों की। और वो कैसे है, लौंडियां पहले समझ लें क्या थी, कि यानी जंगी कैदी होती थी, जंग में पकड़ी जाती थी। जब वो जंग में पकड़ी जाती थी तो उस जमाने में कोई जेलें नहीं होती थी जहां पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को रखा जाए, बल्कि इसी तरह तकसीम कर दिया जाता था उनको, और मर्दों को, औरतों को, गुलाम, लौंडियां। और फिर जो लौंडियां होती थी वो जिसके हिस्से में आती थी, हुकूमत तकसीम करती थी, वो जिसके हिस्से में आती थी बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन होती थी, फिर वह उसकी के पास रहती थी और उसकी मिल्कियत होती थी। और फिर अब या तो वो उसके साथ शादी कर ले, तो शादी क्यों करे, वो तो जाहिर है एक गैर मुस्लिमा है और काफिरा के साथ शादी नहीं हो सकती। अब बहुत बड़ा इसका अजर बताया गया, अगर कोई इंसान उनकी तरबियत करे, उनको अच्छी तरह रखे, फिर उनको आजाद करे, वो यानी मुसलमान हो, फिर उनसे शादी कर ले। लेकिन ये जाहिर है उनका स्टेटस उस तरह से नहीं है, और उनको वो स्टेटस भी नहीं होना चाहिए जो कि एक खानदानी आजाद औरत का है जिसके साथ आदमी शादी करता है। तो इनका जो जंगी कैदी औरतें होती थी, इनको लौंडियां बनाया जाता था, और इनके साथ ताल्लुक कायम करना क्यों जायज था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक रेज किया जाता है। हम बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे, मुझे बहुत और अहम टॉपिक्स आज कवर करने हैं, और ये वो चीज है जो आज नापैद है, दुनिया में नहीं है, मगर इसके हवाले से इस्लाम के ऊपर बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं। हालांकि उस जमाने का ये एक नॉर्म था, ये एक ऐसा नहीं था कि कोई एक इस्लाम ने ये शुरू किया है, ये वो उस जमाने में ऐसा ही होता था। जैसे आज आपको बहुत सारी चीजें नॉर्मल लगती हैं, मगर अगर उस जमाने में देखा जाए तो वो चीजें नॉर्मल नहीं। आज जो हमारी कल्चरल चीजें हैं जो बिल्कुल गलत हैं, वो भी हमें लगता है कि इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो नॉर्म है जमाने का। उस जमाने में इस तरह से लौंडियों को रखा जाता था, हालांकि इस्लाम ने तो इतनी ज्यादा तरगीब दी इनको आजाद करने की, उसके लिए दोहरा अजर फरमाया, डबल अजर है जो कि इनके साथ फिर शादी कर ले। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में दो औरतों के साथ जो लौंडियां बना के लाई गई थी, उनको आजाद करके उनके साथ निकाह किया था, हजरत जुवेरिया के साथ और हजरत सफिया के साथ। तो जो लौंडियां थी, इनकी भी जाहिर है किसी जगह पे या तो इनको माशरे में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वो तवायफे बन जाए, या इनको कत्ल कर दिया जाए, या क्या किया जाए इनके साथ, फिर जो कैदी लाए गए उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अब उससे उनको एक घर मिल जाता था, खाना पीना मिल जाता था, वो उनके घर के काम करते थे, और हर एक इंसान की जो वो जो औरत है उसकी जहां पे जिस्मानी और जरूरियात है वहां पे जिंसी जरूरत भी है, तो उसका मालिक उसको बीवी तो नहीं बनाएगा, मगर बीवी भी कैसे बनाया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया जाता है ना, और ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसके पास आई है, यानी ऐसे ही पकड़ के लेकर कहीं से भी पकड़ ली, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको मिली है। तो फिर क्या है? इसके अंदर समझ नहीं आती कि इसमें क्या ऐसी बात है जिसको कि इतना बड़ा कर दिया जाए कि अब इस्लाम तो लौंडियों के साथ भी ऐसे करने की इजाजत देता है। तो इसमें कोई अरे नहीं, बजाय कि वो बाहर जाके जिना करती फिरे, उनके मालिक उनको अपने घर के अंदर ही रखता था, मगर बीवी वाला रुतबा नहीं उनको मिलता था। आज की नौकरानियां इसके अंदर नहीं आती हैं, ना वो जंगी कैदी हैं, ना वो कहीं से खरीद के लाई गई हैं। तो सिर्फ वो हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद जब वो जंगों में पकड़ी जाती थी, तो चाहे उनके शौहर जिंदा हैं अपने अपने मुल्कों में, अपनी जगह में, मगर अब जब वो जंग में कैदी बना के लाई गई हैं, तो शादीशुदा होने के बावजूद अब उनका मालिक एक हैज तक, एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड तक वेट करने के बाद फिर उनसे ताल्लुक कायम कर सकता है। ठीक है, तो अब समझ आ गई कि शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम है, मगर हाँ वो शादीशुदा औरतें जो लौंडियां बना के लाई जाए वो एज है, एक हैज के बाद हलाल है, किताब अल्लाह अलैकुम, ये बात लिख दी गई है तुम पे, ये तुम्हारे जिम्मे, कि ये इस चीज को ऐसे ही ना समझना कि कोई बात ही नहीं है। ये जिन लिस्ट को जो जिन औरतों की लिस्ट अल्लाह ताला ने दे दी है, इनको तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है, तुम इनके साथ नहीं ताल्लुक रख सकते, कोई भी इनके साथ निकाह करना जायज नहीं है। इसके अलावा तुम जिसके साथ भी शादी करना चाहो कर सकते हो, यानी इन महरम रिश्तों के अलावा या इन औरतों के अलावा जिनको जिनका बता दिया गया, इनके अलावा और दुनिया में कितनी औरतें हैं, वो सब तुम्हारे लिए जायज है उनके साथ शादी करना, कि तुम उनको हासिल कर लो, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। ऐसे नहीं किसी भी औरत को पकड़ के और कह दिया कि भाई चलो ठीक है, मैं इसके साथ शादी कर ली है, मैंने इसको बीवी बना लिया, ऐसे नहीं हो सकता। वराज अलैकुम, इनके अलावा, वराज अलैकुम यानी जो इनके अलावा है वो तुम्हारे लिए हलाल है, इन ये के तुम तब तक भी अम्वालिकुम, अन तब तक भी अम्वालिकुम यानी तलाश करो अपने मालों के साथ। क्या मतलब है यहाँ, यानी तुम उनको हासिल करो अपने माल दे के। मेहर मुराद है, मेहरों के देने के बाद तुम फिर उनके साथ निकाह कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही किसी के भी बना लिया बीवी, मेहर जरूरी है, ठीक है, यानी उसको हक दे के तब वो तुम्हारे लिए हलाल होगी। और दूसरी बात, नंबर 1 बात ये हो गई, अंत तब तब भी हमारे। नंबर 2 बात, मोहसिनीना गैर मुसाफिहीन। नंबर 2 ये शर्त है कि वो कैदे निकाह में आने वालियां हों, उनको लाने के लिए, यानी उनके साथ शादी का इरादा हो, यानी जिंदगी गुजारने का तुम इरादा रखते हो, तब तुम्हारे लिए वो हलाल है। ऐसे ही नहीं कि वक्ती लज्जत के लिए, रात गुजारने के लिए, किसी के साथ टाइम पास करने के लिए कोई ऐसे ही कोई निकाह कर लेता है, उसको निकाह का नाम दे देता है। इससे पता चला कि हलाला जो है, हलाला कराना ये हराम है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि किसी के साथ शादी किस इरादे से कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए जायज कब है, हलाल कब है, जब तुम उनके मेहर उनको दोगे, और जब तुम्हारा ये इरादा है कि मैंने इनके साथ जिंदगी गुजारनी है। ऐसे ही नहीं है सिर्फ वक्त गुजारी के लिए, टाइम पास करने के लिए। ये बात समझ आ रही है? थोड़े से इसके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हैं और नए हैं, लेकिन इनको समझे। गैर मुसाफिहीन, बदकारी ना करने का इरादा हो कि बदकारी के लिए नाइट स्पेंड करने के लिए, क्योंकि इस तरह के भी हैं लोग जिन्होंने निकाहे मुता को ये नाम दे दिया है कि एक बड़ा तरीका बना लिया है बदकारी करने का। निकाह मुता आपको पता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, यानी एक बंदा किसी के साथ शादी करता है और कहता है कि मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा, 6 महीने के लिए तुम मेरी बीवी हो, 4 महीने के लिए तुम मेरी, या 2 दिन के लिए मेरी बीवी हो, या ये हफ्ता तुम मेरी बीवी हो बन जाओ, तो वो उसको उसके पैसे देता है। ये निकाह जो होता था ये जाहिलियत के जमाने में था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको एब्रोगेट नहीं किया था, इसको खत्म नहीं किया था, हत्ता के खैबर पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम कर दिया। फिर तो ये इस्लाम से पहले से चला रहा था, मगर खैबर में जाके इसको और पालतू गधों के गोश्त को हराम किया गया था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कयामत तक ये वाला निकाह हराम है। पहले लोग ऐसे जाते थे, कहीं सफर पे गए, कहीं कहीं गए, तो वहां पे अगर महीने के लिए गए हैं वहां पे एक निकाह मुता कर लिया, लेकिन वो निकाह क्या था, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, ना किसी औरत को बसाने का कोई इरादा है, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ना उसके नान नफके का कोई जिम्मेदारी आदमी पे होती, ना कोई तलाक, ना कोई इद्दत, ना कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये आज भी कुछ लोग करते हैं। एक औरत ने मुझे कहा कि वो मेरी फलां जगह से डाइवोर्स हो गई, तो अब मैंने किसी के साथ निकाह किया हुआ है फॉर 6 मंथ्स, वो आदमी जो है, चलो चलो मुझे घर भी मिल जाएगा और उसके साथ रहूंगी भी, और खाना पीना भी उसके घर में जायरा होगा, तो मैंने 6 मंथ्स के लिए कर ले, तो ये निकाह नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम कर दिया है, बता दिया गया यहाँ पे कि किस लिए तुमने ये निकाह करने, ये तो औरतें तुम्हारे लिए, इसके अलावा, इस लिस्ट के अलावा औरतें जो हलाल हैं तुम्हारे लिए, वो तब हलाल हैं जब तुम उनके मेहर भी अदा करते हो और तुम्हारा इरादा भी है कि इनके साथ मैंने जिंदगी गुजारनी। तो दो निकाह इसमें हराम हो गए ना, निकाह मुता भी और हलाला भी, चाहे आप उसको कहते रहें जो मर्जी। और बदकारी का इरादा ना हो कि ये बदकारी ही है कि भाई थोड़े दिन के लिए उसको बीवी बना लिया वक्ती लज्जत के लिए। फमस्तमता तुम भी मिनहुन्ना, तो जो फायदा उठाओ तुम उनसे, इन औरतों से जो भी फायदा उठा रहे हो, फायदा मतलब क्या है, तुम इनसे ताल्लुक कायम करते हो, तुम्हें इनसे औलाद होती है, तो ये फायदा आदमी को मिलता है ना औरत से, तो अब क्या करो, फ आ तू हुन्ना उजूरा हुन्ना, उनके मेहर उनको अदा करो, उनके अजर। अजर क्यों इसको कहा गया, औरत जो आदमी के लिए इतना बड़ा काम कर रही है तो उसका वो कोई मुआवजा तो नहीं दे सकता उसको, मगर ये जस्ट एक टोकन है, गिफ्ट है उसके लिए। है, ये औरत का हक है, ये आदमी उससे जो नफा उठा रहा है, मस्तमता, तुम जो फायदा तुम उससे उठा रहे हो, तो उनकी मेहर तो उनको दो। फरीदा, फरीजा समझ के, ये आप सोचें ये अल्फाज के आज इसको क्या समझा जाता है मेहर को, और यहां पे क्या कहा गया। तो मुंह से जब लोग बोलते हैं कि देना किसने है, तो फिर इसके बाद क्या रह गया, यानी नीयत ही नहीं है देने की, जबकि कहा गया कि वो मकरूज मरता है जो कि मेहर अदा किए बगैर मर जाए, कर्ज है उसके ऊपर, क्योंकि वो किसी का हक था, उसने हक मार लिया। हकूक की पूछ होगी कियामत के दिन, जिसने जिसका हक देना होगा, तो कियामत के दिन आप जाके, पैसे तो होंगे नहीं, नेकियां अपनी देनी पड़ेंगी, और किसी ने अपना हक नहीं छोड़ना वहां जाके, कोई ये नहीं कहेगा मैं इसके ऊपर रहम करके चलो छोड़ देता हूँ, कोई नहीं छोड़ेगी, कोई बीवी नहीं कहेगी कि यानी मेरा शौहर बड़ा अच्छा था तो चलो कोई बात नहीं इससे मैं नहीं लेती, नहीं, वहां पे नेकियां ले लेंगी फिर। तो इसको बतौरे फरीजा अदा किया जाए, कितनी ज्यादा ताकीद है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, वला जुनाह अलैकुम फी मा तरादई तुम भी, और तुम्हारे पर कोई गुना नहीं है जो बाहम रजामंदी से तुम तय कर लो, मिम बादिल फरीजा, मेहर के बाद, यानी अगर आपने कुछ मेहर तय किया हुआ है तो उसके बाद आप अगर कमी बेशी कर लेते हैं, कोई औरत कहती है कि नहीं चले 50,000 था आप मुझे 20 ही दे दें, कोई बात नहीं है, अब हालात नहीं आदमी के इतने अच्छे, या कह देती है माफ ही कर देती है कि नहीं चले छोड़े मैंने माफ कर दिया, अब आदमी ने इतना बड़ा मेहर रखा था उस वक्त हालात अच्छे थे, आदमी एकदम उसका बिजनेस डाउन हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जो अब चली गई नहीं दे पा रहा, औरत कहती छोड़ दिया मैंने, तो कोई मसला नहीं है फिर, जो आपस में रजामंदी के साथ, प्रेशराइज करने से नहीं, रजामंदी के साथ हो वो ठीक है। दूसरा इसका एक और माना भी है, वला जुनाह अलैकुम फी मा तरादई तुम भी, कि जब तुम पे कोई गुनाह नहीं है, यानी इस मामले में कि तुम इनसे शादी करो, जबकि बाहम रजामंदी के साथ, जब इजाबो कबूल हो गया है, वली की रजामंदी हो गई है, तो उसके बाद कोई फिर, यानी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है निकाह की, निकाह की रिक्वायरमेंट है मेहर, निकाह की रिक्वायरमेंट है कि वली का रजामंद होना, अगर लड़की है तो, लड़के के लिए वली की मौजूदगी जरूरी नहीं है कि उसका वली हो और वो भी रजामंद हो, लड़के की अपनी रजामंदी काफी होती है, लेकिन लड़की के लिए वली की रजामंदी जरूरी है, और इसमें लड़की को कोई कैद नहीं करके दिया गया, इसको भी हम बड़ा बुरा मानते हैं, हालांकि लड़कियां इतनी जज्बाती होती हैं, कोई आदमी थोड़े से डायलॉग बोलता है चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, ऐसे ही फंस जाती हैं उनकी बातों के अंदर, और आदमियों को बड़े बड़े तरीके आते हैं, वो उस तरह से जज्बाती नहीं होते, लड़कियां फौरन ट्रैप में आ जाती हैं, तो उनके लिए उनके वली को रखा गया, ताकि उनके साथ, आपने देखा है, आप एक बात नोट करें, जिन औरतों के पीछे उनके घर वाले नहीं होते उनको ट्रीट कैसे किया जाता है ससुरालों में, और जिनके घर वाले पीछे से स्ट्रांग होते हैं उनका रोब कितना होता है, फिर ऐसा है कि नहीं है बताएं आप, तो वली इसी काम के लिए तो है, जब आदमी को पता होगा ना इसका पीछे वली है, मैं कोई गड़बड़ करूंगा तो पीछे हैं इसके लोग मुझे पूछने वाले, इसका बाप है या भाई है या कुछ है, तो फिर औरतों को नहीं वो कुछ समझते, इसीलिए औरत वली नहीं बन सकती किसी औरत की, कि वो कोई माँ उठ के कहे मैं अपनी बेटी का यहाँ पे कर रही हूँ मैं उसकी वली, ऐसे नहीं हो सकता, मर्द वली होना चाहिए, बाप है या भाई है या फिर और जो कोई, अगर वो भी नहीं है तो कोई और इमीडिएट रिश्तेदार, लेकिन ये जो हमने शुरू कर दिया कोर्ट को वली बना लिया, कि कोर्ट कोर्ट मैरिज हो रही है जी, वहां पे भी क्या होता है, जाके वकील के चैम्बर में बैठ के तो निकाह हो जाता है और उसके बाद कोर्ट उसको सिग्नेचर कर देती है, कोर्ट तो तब वली बनती है जिसका कोई वली ना हो, हुकूमत तब वली बनेगी, यदि एक औरत बिल्कुल ही मिसाल के तौर पे कहीं से कोई रेफ्यूजी औरत आई है, उसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, या कोई ऐसी बेचारी बिल्कुल ही लावारिस औरत है, तो फिर यतीम खाने में पली हुई एक बच्ची है, पता ही नहीं उसके कौन है, फिर जो हुकूमत वक्त है, काजी है, वो फिर उसका वली बनेगा, लेकिन जो बच्चियां भाग के शादियां करती हैं, वो बच्चियां अपनी वली की रजामंदी के बगैर शादी करती हैं, वो ये निकाह जायज नहीं है, ये निकाह सही नहीं होता कि ऐसे निकाह किए जाएं, ठीक है, हदीस में आता है जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करे वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, तो ये आज ये चीजें बना ली गई कि नहीं, कोई भी जा जाके करे और तो ठीक है, और उसके बाद फिर वही लड़कियां रोती हैं क्योंकि तो उनके बैकिंग कोई भी नहीं होते। आज की जो आयात है ना, मैं बहुत ज्यादा ये कहूंगी कि अगर आपके घर में कोई यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, तो आज की आयात उनके लिए बहुत ज्यादा समझने की है। तो यंग बच्चे कोई भी हैं, उनको साथ बिठाएं। आज का सबक इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और माएं भी इसलिए सुने कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमारी यानी माशरती जिंदगी से मुतल्लिक है, हमारे घरों से, हमारे खानदानों से मुतल्लिक है ये आयात। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजा इसका नाम नहीं है, इस्लाम ये भी आप शादियां कैसे करते हो, कहाँ करते हो, किधर करनी है और किधर नहीं कर सकते। और यहां पे आप एक बात भी और नोट करें, ये जो जितनी लिस्ट आपने पढ़ी है, इसमें कहीं खाला जात, फूफी जात, चचा जात, ये जो कजन्स होती हैं, इनका भी कहीं जिक्र है कहीं जिक्र? लेकिन आज हमारे, आज इन मुल्कों में रहते हुए जहां पे दूसरों को देखा, वहां पे ये सोच लिया कजन मैरिज तो बिल्कुल वो है, आई कजन इज लाइक अ सिस्टर, कजन तो बहन की तरह है, हम तो नहीं उसे शादी कर सकते। कहां पे लिखा है? कहीं पे भी चचा जात, फूफी जात, इनका तो कहीं जिक्र नहीं है, वो तो महरम नहीं है रिश्ते। तो यहां पे हमें पता चला बाहम रजामंदी, यानी लड़के की रजामंदी भी हो और लड़की के वली की भी और लड़की की भी, ये सबकी रजामंदी होनी जरूरी। चलो लड़के की तो है ही, वो तो निकाह करने आया, लेकिन लड़की भी और उसके वली दोनों रजामंद होंगे तो फिर शादी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वली रजामंद है, लड़की का तो कोई बात ही नहीं। नहीं, लड़की से भी इसीलिए कबूल कराया जाता है, मिन बादिल फरीजा, मेहर के बाद, मेहर मुकरर होने के बाद, इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, तुम्हें हुक्म देने वाला, तुम्हें ये बातें समझाने वाला कौन है? कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई फलसफी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है जिनकी थियोरियां रोज चेंज होती रहती। अलीम और हकीम जात है जिसके पास हर इल्म है, और उसका इल्म इंसानों की तरह शैलो नहीं है, उसका इल्म हर तरह से वो जानता है किसी चीज को, और हिकमतें हैं उसके अंदर। समझो इस बात को, उसने जो तुम्हें इल्म और हिकमत के बलबूते पे जो उसने अहकामात दिए हैं, उनको अपने लिए बुरा ना जानो, उनको अपने लिए ऐसे ना समझो कि कोई कैद है, एक मुसीबत है, आए हमें ऐसे कह दिया गया, अब निकाह को कैद कह दिया गया, हम तो निकाह के अंदर आना ये तो एक मुसीबत हो गई। नहीं, इसके अंदर तुम्हारे लिए कितनी खैर है छुपी भी, ये वो अलीम और हकीम को मालूम है। तो चाहे विरासत के अहकाम है, चाहे शादी के अहकाम है, अब एक लड़की का मुझे क्या वली की जरूरत है? लो अब हम लड़कियां वली की रजामंदी से करें, लड़के अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? हमें भी आजादी होनी चाहिए। नहीं, ये समझे ये बातों को, हम नहीं अपना उतना भला जान सकते जितना अल्लाह ताला को पता है कि हमारा भला किसमें है। और फिर वमन लम यस्तते मिनकुम तौलन, एक आदमी को कहा गया अगर तुम्हारे पास फराखी नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक अयन के मोहसिनात मोमिनात के, तुम मोहसिना मोमिना औरत से, ईमान वाली मोहसिना, यहां पे मोहसिना का माना वो जो मैंने आपको चार माने बताए ना, उनमें से आजाद औरत वाला माना है, ठीक है? ये कॉन्टेक्स्ट देख के पता चलेगा, लफ्ज तो वही है, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बनता है, यानी क्योंकि आगे जो बात आ रही है ना, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आजाद औरत मुराद है। अगर आदमी को कहा गया तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी पे नहीं है, अभी इतने सेटल नहीं हुए हो कि तुम ना नफका उठाओ, एक खानदानी औरत जाहिर है जितनी कोई बड़े खानदान से होगी उसका जाहिर है उस मुताबिक होगा। आज भी सोसाइटी में देखा अगर कोई बिल्कुल एक गरीब बच्ची से शादी कर रहा, उसकी इतनी डिमांड ही नहीं होगी, क्या डिमांड कर लेगी? उसका मेहर भी उतना नहीं रखना पड़ेगा जो किसी बड़े खानदान की औरत से करेगा, कोई ऐसी जो कि बड़ी जगह पे रहने वाली है, उसको उसके मुताबिक, उसको झोंपड़ी में तो नहीं ले जाके रख सकता, उसको उसके मुताबिक घर भी देना पड़ेगा, कपड़ा, पैसा, खाना पीना, उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक होगी। तो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई लोग अभी हो सकता है सेटल ही ना हुए। तो उनको बताया गया अगर तुम नाम नफका नहीं देने की वसत रखते जो कि मोहसिना औरत का होता है, और मेहर उतना नहीं रख सकते जो एक मोहसिना औरत, आजाद औरत एक मांगती है कि मेरा इतना मेहर होना चाहिए, खानदानी औरत, आजाद औरत कहती है कि मुझे इतना मेहर दोगे तो मैं शादी करूंगी। तो अगर तुम्हारे उनके साथ नहीं तुम इस्तात रखते, फमिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मुमिनात, तो फिर जो तुम्हारी लौंडियां हैं, तुम्हारी लौंडियों में से जो तुम्हारे अंडर हैं, मोमिना हैं जो, उनसे कर लो फिर, क्योंकि एक लौंडी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी, उसको मेहर उतना नहीं देना पड़ेगा। आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी जो आप समझे इसके अंदर एक बारीक नुक्ता है, और वो ये है, यहां पे ये नहीं कहा गया कि ए आदमी अगर तुझे नहीं इस्तात है कि तू मेहर दे सकता हो एक आजाद औरत का, तो कोई बात नहीं, ना दे तू, तू बगैर मेहर के ही कर ले, या लिखवा ले, फिर देना किसने है, या नफके देने की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, तू अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो तेरे लिए रुख्सत है, तुझे इजाजत है कि तू इसके बगैर ही कर ले, ये नहीं कहा गया। इससे आप सोचे मेहर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये शादी की निकाह के शरायत में से है मेहर, और हमने इसको एक मजाक बना के रख लिया, यकीन जाने मजाक के सिवा कुछ नहीं रह गया, जहां पे दुल्हन की जूती कई हजारों में है वहां पे मेहर 32 रुपए है। हमें शर्म नहीं आती कि हम अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, जहां पे उसने जो जोड़ा पहना हुआ है वो लाखों का है, लाखों का, और उसका मेकअप कई हजारों का है, कई हजारों का, वहां पे मेहर कितना है, 1,000 रुपया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी छलांग लगा ली, 1,000 रख ली, और जहां पे लाख रख ले वहां पे ये पता है कि लाख सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, ताकि अनाउंस हो जाए कि कितना बड़ा मेहर रखा है, हमने देना नहीं है। यहां पे क्यों ना कह दिया गया, किसके पास नहीं है इस्तेताद, उसको कह दिया कि तुम लॉन्डी से कर लो, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रुख्सत है, तुम्हारे लिए जायज है, तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना ये कहा गया तुम उनको ना 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 नफका देना, ना उनको खाने पिलाने की कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारे पर नहीं, खुद ही कमाती रहेंगी और खाती रहेंगी, तुम्हारे पर नहीं जिम्मेदारी, क्योंकि तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचें हमारा इस्लाम क्या है और हम आज जिंदगियां क्या गुजार रहे हैं, खुद सोचें कि कुरान के अहकामात क्या हैं, और फिर भी औरतें कहती हैं लो हमारे साथ तो कुछ ज्यादती हो गई, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, और क्या चाहिए, ये कहो कि तुम्हारे माशरे, तुम्हारा कल्चर तुम्हें कुछ नहीं देता, उसको छोड़ो और इस्लाम की तरफ आओ, ये है जो आपको प्रोटेक्शन भी देगा, ये है जो आपको हकूक दिलाएगा, शौहर से भी हकूक दिलाएगा, और इससे हम भागते हैं दूर। और इसके बाद आप मुझे, दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे इसके बाद बताएं कि यहां पे कहा जा रहा है अगर पैसे नहीं है, आजाद और औरत का मेहर ज्यादा है, खानदानी औरत से तुम नहीं कर सकते, तो लौंडी से कर लो, ठीक है, इसके बाद आप ये बताएं, यहां पे देने को कहा जा रहा है और हमारे माशरे में लेने का रिवाज है, कि वालदैन से उल्टा डिमांड किया जाता है कि तुम हमारे घर भरो, लड़की ने आना है तो उसके लिए बिस्तर भी लाओ, उसके लिए बर्तन भी लाओ, चम्मच तक वो अपने लेकर आए, चादरें तक लेकर आए, अपनी हर हर चीज अपने घर से उठा के लाए, ये कितनी कबीह बात है, और इस्लाम के अहकाम से कितनी ऑपोजिट बात है, कि इस्लाम कह रहा है कि दूल्हा दे, और यहां पे ये कह रहे हैं दुल्हन दे, जो कि सरासर हिंदुआना चीज है, क्योंकि उनमें बेटी को बोझ समझा जाता है, तो ये जो अब आया ना लड़का, ये तो उनके बोझ उतारने के लिए आया, कि मुसीबत एक उनके सिर पे थी वालदेन के, उस मुसीबत को अपने घर लेकर जाएगा, उस बोझ को अपने घर उठा के लेके जाएगा, तो अब मुझे चीजें दो क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठा रहा हूं। इस्लाम कहता है बच्ची तो रहमत है, रहमत है, कोई अपनी जान का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है, कोई रहमत तुम्हारे घर भेज रहा है, तुम इंतजाम करो उसके खाने पीने रहने सहने का, वो तुम्हारे घर को आबाद करने आई है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने आई है, तुम्हारे घर की टेक केयर करने के लिए आई है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। अब्बा इसके बाद बताएं, या हम इनके साथ रहते रहते हमने उनकी चीजें ले ली, और हमारी अपनी जो बातें हैं, जो हमारे अपने तरीके हैं, वो कुरान के अंदर बस लिखे ही रह गए हैं, जिंदगियों में नहीं है। आज फिर ये आयतें पढ़ने के बाद वो माएं, वो बच्चे लड़के नहीं इतना कहते, उनको नहीं इतनी बातों का समझते, ये माएं बहनें साथ ये जो घर की खवातीन होती है ना, उनको बहुत ज्यादा होती, कितना जहेज मिलेगा, क्या लाई है, किस घर से ज्यादा मिलना है, ये हमारे तरीके हैं। अब इन आयतों को पढ़ने के बाद आप बताएं कि हमें क्या करना है, क्या इसके बावजूद हमें जहेज डिमांड करना चाहिए या फिर ये कह देना चाहिए नहीं आपकी मर्जी है जो मर्जी दे दें। क्यों, ये भी एक तरीका होता है दूसरे को कहने का कि आप दे जरूर देना, और आप वो मर्जी का अपने उतना ना लेकर आए तो फिर क्या हो, जितनी इनकी मर्जी थी। तो फिर उस बच्ची के साथ किसी ने क्वेश्चन किया है कि देखें अगर नहीं जहेज लेकर जाते तो वहां पे इज्जत ही नहीं होती, इसलिए नहीं वो इज्जत देते क्योंकि वो खुद जाहिल है, उन इस्लाम के अहकामात को उनको नहीं पता, क्योंकि जो इस्लाम से रोशनास हो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो खुद देना है, उसको तो खुद इस चीज के लिए एतमाम करना है कि एक बच्ची आई है तो इसके लिए रहने का खाने का पीने का हर चीज का इसके लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं। घर कौन बसा रहा है अपना, लड़का, उसको ये सारी चीजों का इंतजाम करना है, तो हमने क्या बना के रख दिया। अब कुरान पढ़ने के बाद क्या हमें इन तरीकों को बदलना है या नहीं, या वैसे ही चलते रहना। इंसान लालची बहुत है ना, बहुत लालच है इंसान के, जहां से माल आ रहा हो किसको बुरा लगता है, तो इसलिए हम दीन पढ़ने के बाद फिर हम अपने तरीके आज क्या बदलें, आपकी मर्जी है। नहीं, आप उनको कहें कि नहीं आपने देना, आप अपनी बच्ची दे रहे हैं वही हमारे लिए काफी है, हमने एक चीज भी नहीं लेनी आपसे। और मैंने ऐसी शादियां भी देखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्ची सिर्फ अपने तन के कपड़े लेकर आई है बस, और अपनी अपनी जो अपनी यूज का जो भी उसके कपड़े वगैरह हो गए हैं कुछ, बस दैट्स इट, एक सूट केस उसका बस, जैसे इंसान कहीं पे भी जाता है तो। अरे हमारे यहां तो ट्रक जाते हैं माशाल्लाह, बाकायदा ट्रक के ट्रक भेजे जाते हैं, तो वो लड़का पहले किस चीज के ऊपर सोता था, अगर ये लड़की नहीं सामान लेकर आना था उसके सोने के लिए उठने के लिए बैठने के लिए, तौलिए तक दिए जाते हैं, क्या वो लोग पहले खाना नहीं खाते थे जो चम्मच तक दिए जाते हैं। तो ये कितनी बुरी चीज है जो हम करते हैं, और जहां हम ये कह देते ना नहीं वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी जहेज दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की दी थी तो पता नहीं क्या, आप ये खुद सोचें जिन लोगों को नहीं पता ना, तो वो ऐसी ये भी जहालत की बातें हैं, क्योंकि ये हजरत अली ने पैसे दिए थे इन चीजों के कि ये आप इन चीज इससे ये चीजें ले लें, उनके लिए उनके पैसों से थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कोई जहेज दिया था, तो ये भी अपने जहन को क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जरा बताएं कौन सी कोई लिस्ट कोई बता सकता है, मेहर की तो हमें पता चलती है कि इसको कितना मिला था, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन के जहेज जरा आप बताएं कि कितने लेकर आई थी वो जहेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की भी शादियां की थी या नहीं, कितने जहेज दिए थे उनको, हाँ मेहर पता चलते हैं कितने मिले थे। तो अगर हम नहीं ये चीजों को बदलेंगे तो कौन बदलेगा, तो अपनी सोच को बदलिए, अपने तरीकों को बदलिए, अब कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें, और ये मत कहें क्या करें फिर हम, क्या करें फिर माशरा ये ऐसा है क्या करें हम, नहीं हम आज स्टैंड नहीं लेंगे तो ये चीजें कभी नहीं बदल सकती, और आप जो पढ़ रहे हैं कुरान को ये नहीं अगर बदलेंगे तो कौन बदलेगा।